श्रोताओं नमस्कार, रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन में आप सभी का स्वागत है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक है
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। श्रोताओं नमस्कार, रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन में आप सभी का स्वागत है। रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन की तीन कड़ियां अब तक आप सुन चुके हैं और इन कड़ियों में पूछे गए अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर भी आपने बताए गए पते पर जरूर भेजे होंगे। प्रस्तुत है हमारी आज की चौथी कड़ी, इसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि इसके आखिर में भी हम आपसे इस कड़ी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर लिखकर भेजना होगा। कहाँ, किस पते पर, अब तक आप जान चुके होंगे, फिर भी हम पता आपको बता देते हैं। डॉक्टर एन के पांडे, संभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला 1। इस कड़ी के अंत में हम आपको पता एक बार फिर जरूर बताएंगे। बहरहाल आज की इस कड़ी का विषय हम आपको बता दें, आलू की खेती में खाद व उर्वरकों की आवश्यकता। और हमारी आज की इस कड़ी के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वी के दुआ। डॉक्टर दुआ, हमारी आज की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
हम अपने श्रोताओं के लिए, अपने आलू उत्पादकों के लिए आपसे जो प्रश्न पूछेंगे उनमें सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आलू में किन पोषक तत्वों का महत्व है।
तृप्ता जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आलू की फसल की बढ़ोतरी एवं उसके अच्छे उत्पादन के लिए 16 पोषक तत्व जरूरी हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम मुख्य तत्व हैं, जबकि सल्फर, कैल्शियम व मैग्नीशियम द्वितीय तत्व तथा मॉलिब्डेनम, जिंक, तांबा, लोहा एवं मैंगनीज सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं।
और आलू में उर्वरकों की जरूरत क्यों होती है?
देखिए, अगर हम आलू का गेहूं और धान से तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि प्रति समय एवं प्रति इकाई भूमि में अधिक शुष्क पदार्थ उत्पादन करने की क्षमता आलू में होती है। ये क्षमता लगभग इन गेहूं, धान एवं मक्की वगैरह जैसी जो हमारी धान की फसलें हैं इनसे 3-4 गुना तक होती है। इसलिए आलू में पोषक तत्वों की खुराक एवं अन्य फसलों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में जरूरत होती है। ये पोषक तत्व हालांकि प्राकृतिक खाद से मिलते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मिट्टी में अब जैविक खाद की उचित मात्रा उपलब्ध नहीं है, इस कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। ये सब देखते हुए हमें आलू के अंदर उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है।
डॉक्टर दुआ, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो आलू की फसल जिसके हम बात कर रहे हैं इनमें उर्वरकों की मात्रा जो है वो किन बातों पर निर्भर करती है?
ये आलू की फसलों में कितना उर्वरक दिया जाए ये निर्भर करता है कि जिस खेत में आलू लिया जा रहा है वहाँ मिट्टी की संरचना कैसी है, उसकी उपजाऊ शक्ति कितनी है, कौन कौन से फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, किस मौसम में आलू लगाया जा रहा है तथा आलू की हम कौन सी किस्म उगा रहे हैं।
मिट्टी की बात आपने की है डॉक्टर दुआ, तो आपसे ये भी जानना जरूरी हो गया कि आलू की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है और पीएच मान की जब हम बात करते हैं तो उनका पीएच मान कितना होना चाहिए।
तृप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो आलू का उत्पादन लगभग सभी तरीके की मिट्टी में हो जाता है, लेकिन दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी जो है वो आलू के उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ तक पीएच मान यानी मृदा की अम्लीयता की बात है तो आलू 5 से लेकर 8 पीएच मान वाली मृदाओं में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है।
डॉक्टर दुआ, जो मिट्टी परीक्षण की हम बात करते हैं और अब जब हम आलू की बात कर रहे हैं तो मिट्टी परीक्षण यानी मिट्टी की जांच आलू में किस हद तक सहायक है?
जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि उर्वरकों की कितनी मात्रा दी जाए ये तभी हम जान सकते हैं जब मिट्टी की जांच करें, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही पता पड़ता है कि मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। जांच के आधार पर अगर हम उर्वरक डालते हैं तो मिट्टी की उपजाई शक्ति एवं पैदावार को हम सुनिश्चित कर सकते हैं और पर्यावरण का संतुलन भी सही रहता है।
और जो नत्रजन है, नत्रजन तत्व आलू की उपज बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है और उसकी कितनी मात्रा उपयुक्त होती है?
देखिए, नाइट्रोजन का जो उपयोग है उससे आलू में कंदों की संख्या, आकार दोनों बढ़ते हैं। पौधे की बढ़त तथा पत्तियों की संख्या एवं आकार में भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की अगर कमी रहती है तो उससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और नीचे के और बाद में सभी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिसके कारण आलू का जो आकार है वो कम हो जाता है और पैदावार पर असर पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नाइट्रोजन की जरूरत से ज्यादा मात्रा देते हैं तो पौधों की बर्बाद अधिक हो जाती है और कंद देर से बढ़ते हैं तथा उनका आकार छोटा रह जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ खेती वर्षा पर निर्भर है वहाँ प्रति बीघा 10 से लेकर 12 किलो तक नाइट्रोजन दी जानी चाहिए और वो क्षेत्र जहाँ पे पानी की व्यवस्था है यानी जहाँ किसान हमारे सिंचाई कर सकते हैं वहाँ पे ये मात्रा बढ़ा के 15 से 20 किलोग्राम प्रति बीघा हो सकती है।
नत्रजन अलग अलग तरीके से हमारे किसान भाई देते हैं, तो आलू की जब हम बात करते हैं तो आलू के लिए कौन कौन से नत्रजन उर्वरक उपयोगी हैं?
आलू में जहाँ तक नाइट्रोजन के सोर्स की यानी नत्रजन किस तरीके से दिया जाए उसकी बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या जिसको हम शॉर्ट में कैन कहते हैं वो आलू के लिए अधिक उपयोगी है। इसके अलावा डीएपी के रूप में भी नाइट्रोजन दिया जा सकता है। हालांकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा काफी अधिक होती है, फिर भी आलू की फसल के लिए ये कम उपयुक्त है। बिजाई के समय हम 50 किलो नाइट्रोजन से अधिक का इस्तेमाल करते हैं अगर यूरिया का, तो ये बीज कंद के अंकुरों को हानि पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिस वक्त हम मिट्टी चलाते हैं उस वक्त हम यूरिया खाद दें।
तो नतजन उर्वरकों को कब और कैसे प्रयोग करें?
हाँ तृप्ता जी, ये बहुत जरूरी है कि हम खाद को कब डालें और कैसे डालें। किसानों को इस चीज की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि वो क्षेत्र जहाँ फसल वर्षा पर आधारित है, वहाँ 2/3 नाइट्रोजन की जो मात्रा है बुआई के समय और 1/3 मात्रा मिट्टी चढ़ाने के समय देने से अच्छी उपज मिलती है। इसके विपरीत जहाँ पर सिंचाई का प्रबंध है, वहाँ आधा भाग जो नाइट्रोजन का है बिजाई के समय और शेष भाग मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। नाइट्रोजन खाद खासतौर पर यूरिया कंदों के साथ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए खाद को कंदों से 5 सेंटीमीटर बगल में या नीचे डालनी चाहिए और इस तरीके से डालने के बाद उसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए।
हमारे जो आलू उत्पादक हैं डॉक्टर दुआ, वो आलू की फसल में पर्णीय छिड़काव भी करते हैं, तो पर्णीय छिड़काव कहाँ तक सहायक है और ये कब करना चाहिए?
हाँ, हमारे जो किसान भाई हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पर्णीय छिड़काव है या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोलियर स्प्रे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में 50 से 60 दिनों के बाद यानी बिजाई के लगभग 2 महीने के बाद हमें करना चाहिए, और ये यूरिया के फॉर्म में करना चाहिए, क्योंकि यूरिया में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो प्रभावशीलता उसका 1.5 गुना हो जाती है पर्णीय छिड़काव से। और पत्तियों पर यूरिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो हम फफूंदनाशी और कीटनाशी जो दवाएं हैं उनके साथ भी मिलाकर कर सकते हैं।
पर्णीय छिड़काव यानी पत्तों पर जो हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। डॉक्टर दुआ, आलू की फसल में जो फास्फोरस है, क्या इसका भी कुछ महत्व है?
जी हाँ, इसका बहुत महत्व है। फास्फोरस जो है पौधों में जड़ों के विकास एवं फसल की शीघ्र परिपक्वता में मदद करता है। इसके प्रयोग से जो मध्यम आकार के जो कंद हैं उनकी संख्या बढ़ती है तथा आलू के पौधों को पिछहता झुलसा रोग से भी कुछ हद तक ये बचाता है।
हम बात कर रहे हैं आलू की खेती में खाद व उर्वरकों की आवश्यकता की, तो ये भी आपसे जानना जरूरी हो जाता है कि आलू के लिए कौन से फास्फोरस युक्त उर्वरक उपयुक्त हैं तथा इनकी कितनी मात्रा देनी चाहिए?
जी, आलू के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या SSP या डाई अमोनियम फास्फेट DAP अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इसमें मौजूद फास्फेट घुलनशील होता है। उर्वरक के साथ जहां तक हम बात करेंगे फास्फेट की, तो फास्फेट का 80% भाग मिट्टी में स्थितकरण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इतना हम अप्लाई करते हैं, जितना हम डालते हैं, उसमें से 80% पौधों को उपलब्ध नहीं रहता। इसके कारण केवल 10 से लेकर 15% फास्फोरस ही पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसी वजह से हमें इसकी अधिक मात्रा की उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी के जांच के बाद ही इसलिए हमें फास्फोरस की मात्रा की दर तय करनी चाहिए। सामान्यतः 8 किलो जो है हम प्रति बीघा फास्फेट देने की हम संस्तुति करते हैं। अम्लीय मृदाओं में इसकी कुछ मात्रा की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस का स्थिरीकरण अधिक होता है।
फास्फोरस के स्थिरीकरण की बात आपने की डॉक्टर दुआ, तो फास्फोरस उर्वरक कैसे और कब प्रयोग करना चाहिए आलू उत्पादक भाइयों को?
क्योंकि फास्फोरस जो है स्थिरीकरण हो जाता है इसका मिट्टी में, इसलिए उर्वरक की जो संपूर्ण मात्रा है बुआई के समय ही नाली में कंद बीज के पास जहां पौधों की क्रियाशील जड़ें अधिक होती है देना अधिक लाभदायक होता है।
पोटेशियम के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसका आलू में क्या महत्व है?
जी, पोटेशियम जो है तीसरा मुख्य तत्व है, और आलू में अगर पोटेशियम ही एक जो तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा पौधा ग्रहण करता है, ये पौधों को स्वस्थ रखता है और सूखे में पाले से बचाता है। इसके प्रयोग से बड़े कंदों की संख्या बढ़ती है जो कि भोज्य फसल के अच्छे दाम दिलाने में सहायक।
डॉक्टर दुआ, आलू के लिए जो पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, कौन सा पोटेशियम उर्वरक उपयुक्त है और इसकी कितनी मात्रा फसल में देनी चाहिए?
मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश सबसे अधिक उपयुक्त है, और इसकी मात्रा प्रति बीघा 8 किलोग्राम देने की जरूरत पड़ती है।
पोटाशियम उर्वरक कब और कैसे प्रयोग करें?
पोटाशियम उर्वरक का जहाँ तक सवाल है, तो जहाँ भोज्य फसल यानी कि जहाँ हम आलू को सीधे बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करते
जो
हैं,
खाने वाले आलू की हम बात करते हैं,
तो उसका 2/3 भाग बिजाई के समय दे देना चाहिए और शेष भाग मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए।
डॉक्टर दुआ, आलू की जो किस्में हैं उनका उर्वरकों की मात्रा पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या?
जी हाँ बिल्कुल, ये सब निर्भर करता है कि आलू की अवधि कितनी है और हमारे को किस उद्देश्य के लिए आलू लगा रहे हैं। अगर अधिक अवधि में जो तैयार होती है हमारी किस्में, तो उसमें अधिक नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसी प्रकार से जब हमें बड़े आकार वाले कंद और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों अगर जो खाद डालनी है, तो हमें पोटेशियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
डॉक्टर दुआ, कहा यह जाता है कि सूक्ष्म तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी फसल के लिए, तो जब हम आलू की फसल की बात कर रहे हैं, तो आलू की फसल में सूक्ष्म तत्वों की कब आवश्यकता होती है?
तृप्ता जी, आपके माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में रासायनिक खाद या गोबर की खाद का उपयोग होता है, वहां सूक्ष्म तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत जहां गोबर की खाद का इस्तेमाल कम है या नहीं है, वहां पर जिंक की कमी देखी गई है। इससे पौधा छोटा एवं पीला पड़ जाता है। मिट्टी के जांच के आधार पर हम सूक्ष्म तत्वों का बुआई के समय या बीज आलू को सूक्ष्म तत्व के घोल में डुबोकर व छाया में सुखाकर बोने से इनकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो खड़ी फसल में इनकी कमी दिखने पर पत्तियों का छिड़काव ही सही उपाय है।
गोबर की खाद जो होती है डॉक्टर दुआ, वो हर फसल के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो गोबर खाद का आलू की फसल में कितना महत्व है?
देखिए, गोबर की जो खाद है ना तो केवल उपजाऊ शक्ति को ही बढ़ाता है बल्कि भौतिक संरचना में भी योगदान देता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो उर्वरक हैं उनकी दोहन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। गोबर की खाद की हम 2.5 टन प्रति बीघा की संस्तुति करते हैं और अगर हम इतनी खाद हम खेत के अंदर डाल दें तो हमें फास्फोरस पोटाशियम के उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, आलू में इसका कितना महत्व है?
देखिए, हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है इसकी जलवायु ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत अनुकूल है और किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। खेत में रासायनिक खादों में कीटनाशक कम से कम प्रयोग करें तथा प्राकृतिक खाद यानी गोबर की खाद, जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट आदि का अधिक से अधिक उत्पादन करें। इससे न सिर्फ आलू की उपज बढ़ती है बल्कि कंदों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। ऑर्गेनिक जो हमारा आलू है उसके, जैसे कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, बाजार में उसके दाम भी अधिक मिलते हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन भी ठीक रहता है।
तो आलू की खेती में जैविक खाद की क्या उपयोगिता है?
देखिए, जो हम जो मुख्य जैविक खादे हैं, एक है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरलम। इनके उपचार से मदा में बिजाई में डालने से जो जीवाणु है हवा में विद्यमान नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित करते हैं। वहीं फॉस्फोबैक्टीरिया और माइक्रोआइजा जो मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस है उसको घुलनशील तत्व में बदलता है तथा पौधों को उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। जिन मदाओं में जैविक कार्बन की मात्रा अधिक है वहाँ पे जो हमें जैविक खाद का उपयोग करें तो वो अधिक लाभकारी होता है।
डॉक्टर वीके दुआ, आज आपने हमारी इस रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन में आलू की खेती में खाद व उर्वरकों की आवश्यकता के ऊपर बहुत ही बढ़िया जानकारी उपलब्ध करवाई। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कड़ी आपने ध्यान पूर्वक सुनी होगी। तो लीजिए, हमारी आज की इस चौथी कड़ी का प्रश्न आप नोट करें। हमारी आज की इस कड़ी का प्रश्न है, आलू की फसल में यूरिया का पर्णीय छिड़काव बिजाई के लगभग कितने दिन बाद किया जाना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर दोहरा दें। आलू की फसल में यूरिया का पर्णीय छिड़काव बिजाई के लगभग कितने दिन बाद किया जाना चाहिए? बस जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आप भेज दीजिए, क्योंकि जिस श्रोता का उत्तर सही पाया जाएगा उसे रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन के अंत में ड्रॉ द्वारा विजेता घोषित किया जाएगा और CPRI द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पता हम आपको एक बार फिर बता दें, डॉक्टर NK पांडे, संभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला 1। पता आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आज की इस रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन को संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
रेडियो पाठशाला आलू उत्पादन। Thank you.